अब तो दिलों की मुश्किल आसान हो गई है, दुनिया को मोहब्बत की पहचान हो गई है।
अब प्यार की हर मंजिल आसान हो गई है, आपस में दो दिलों की पहचान हो गई है।
अब दो दिलों की मुश्किल
से गुजरा एक दिल कोई बेचारा, ना जाने किस अदा से तुमने उसे पुकारा, ऐसा किया इशारा कुछ सोच कर बेचारा, वो हो गया तुम्हारा। दुनिया भी देख कर ये हैरान हो गई है,
आपस में दो दिलों की पहचान हो गई है।
अब दो दिलों की मुश्किल
मुश्किल। ओम शांति। 1976 अमेरिका में एक यूनान का रहने वाला व्यक्ति था जो कि एक सैनिक था कभी और अभी लंबे समय से अमेरिका में रहता था। जब वो 60-70 के बीच उसकी उम्र थी, उसे खांसी हुई, डॉक्टरों को दिखाया और जो जांचें हुई उससे ये पता चला कि उसको फेफड़े का कैंसर है और वो कैंसर अपनी लास्ट स्टेज पर है। ऐसे लगभग 9 अलग अलग डॉक्टरों ने उसकी जांच की, जो कि सभी अमेरिका के बहुत बड़े थे और स्पेशलिस्ट थे, और उन सभी ने अंत में ये बताया कि तुम 6 मास से ज्यादा दिन नहीं जी पाओगे, केवल 6 मास अंतिम। तो उसे लगा कि अमेरिका तो मेरी भूमि नहीं है, मेरी मातृभूमि तो ग्रीस है, यूनान है, क्यों ना मैं वहीं जाकर मरूं जहां मेरे पूर्वज थे। और वो अपनी पत्नी को लेकर ग्रीस पहुंचता है ताकि चैन से मर सकूं, उसी जगह पर जहां मेरे दादा परदादा मरे थे, और वहां पहुंचकर उसके बहुत पुराने मित्र उससे मिलने आते हैं और रोज मिलने आते हैं, और वहां पर खेत होता है, खलियान होते हैं, और वहां पर एक बगीचा होता है उसका, और धीरे धीरे वो जो मन उदास था, वो जो मन दुखी था, एक नए वातावरण में आकर सब कुछ बदल जाता है। और वहां पर जीवन का वो आनंद जो उसे कभी नहीं मिला था वो मिलने लगता है। स्टेमेटिस उस व्यक्ति का नाम था और ये सत्य घटना है। तो वो स्टेमेटिस बहुत खुश रहने लगता है और ये तो भूल ही जाता है कि उधर डॉक्टरों ने क्या कहा था, और ये तो भूल ही जाता है कि मुझे कैंसर भी है और वो अंतिम स्टेज पर है, और इतना खुश रहने लगता है और सारे दिन भर अलग अलग प्रकार के काम करता है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, उसकी जो खेती है उसमें काम करता है, और वहां बगीचा है उस बगीचे को भी देखता है, समय देखने का भी उसको समय नहीं होता है। तो ऐसे करते करते 6 माह कब बीत जाते उसे पता ही नहीं चलता है। 6 माह क्या, 1 साल क्या, ऐसे 25-30 वर्ष बीत जाते हैं। अभी अभी 2012 में उसने शरीर छोड़ा। बीच में वो एक चक्कर अमेरिका में लगाता है ये देखने के लिए कि डॉक्टरों का क्या कहना है। तो जब वो अमेरिका पहुंचता है और डॉक्टरों को ढूंढता है तो पता चलता है 9 के 9 डॉक्टर चल बसे। स्टेमेटिस मोराइटिस नाम का ये व्यक्ति, उसका बड़ा एक फोटो भी है, बूढ़ा सा पर बड़ा यंग, बड़ा उमंग उत्साह से भरा होगा। तो एक समय था जो उदास था, दुखी था, शरीर भी बीमार था, मरने वाला था, पर जैसे स्थान बदलता है, मन का मौसम बदलता है, मन का वायुमंडल बदल जाता है, उसी अनुसार शरीर में भी बहुत कुछ होने लगता है। और जो व्यक्ति 6 माह में मरने वाला था वो अभी 2012 तक था, 103 वर्ष की उम्र में उसने शरीर छोड़ा। हर चीज का मूल है क्या, मन। कल सुबह की अव्यक्त वाणी, मन ही सब कुछ करता है। यदि मन मेहनत करे तो तन को भी मेहनत करनी पड़ती है। बुखार है नहीं पर लगेगा, कितना बुखार है, 103। कोई कहेगा थर्मामीटर से देखो, कहेगा नहीं, हम बोल रहे ना है बस, क्योंकि मन ही बीमार है तो शरीर भी बीमार, मन ही बीमार है तो धन कमाने में भी मेहनत, मासी का घर नहीं है, बहुत मुश्किल लगता है, और संबंध संपर्क भी कभी ये रूठेगा कभी वो रूठेगा, तो मन ही ठीक नहीं है, मन ही उदास है, मन ही मेहनत कर रहा है, मन ही दुखी है, और दुखी मन वायुमंडल को भी दुखी बना देगा। इसके लिए बाबा के महावाक्य देकर, मूल क्या है, मन, और बच्चे मेहनत करे ये बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर फिर भी मेहनत कर रहे, फिर भी मुश्किल शब्द है बच्चों की डिक्शनरी में, और बाप को ये शब्द पसंद नहीं है, और इस मेहनत के बाबा ने तीन कारण बताए। कौन कौन से? जिसके वजह से हम मेहनत करते हैं, वो कौन से कारण है? बाबा कहते तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बच्चे मेहनत करते हैं और दुखी होते हैं, वो कौन से कारण है जिनकी वजह से हमको मेहनत करनी पड़ती है? कल की अव्यक्त वाणी, चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार, ये नीचे शांतिवन में चली हुई मुरली। हम कल सुबह की अव्यक्त मुरली की चर्चा कर रहे हैं, वो 31 अक्टूबर 2007 की मुरली है, हम चर्चा कर रहे हैं 85 की मुरली की। पहला कारण है भूलना और दूसरा कारण अभी अभी मुरली चली है कल सुबह, क्यों मेहनत करनी पड़ती है? दूसरा कारण महत्व को न जानना और तीसरा कारण व्यर्थ की रचना करना। कैसी रचना करते? टेढ़े बाके लूले लंगड़े, ये तीन मुख्य कारण है जिस वजह से मेहनत करनी पड़ती है। बाबा ने कहा बापर से मेहनत करते आए, चिल्लाते आए, पुकारते आए, अब भी मेहनत, बाप बच्चों की मेहनत देख नहीं सकता। मुश्किल शब्द बाप को बिल्कुल पसंद नहीं है, इसकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है कि बाप को कौन कौन से शब्द पसंद नहीं है। मुश्किल, मेहनत, कभी कभी, करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, क्या, क्यों, कैसे, कोशिश, प्रयत्न, गेगे। तो बाबा को कौन से शब्द पसंद है? सदा। बाबा को कौन से शब्द नहीं पसंद है? सिंगल। सिंगल उसे पसंद नहीं, डबल उसे पसंद है। कौन से शब्द पसंद है? ओहो, आहा। और कौन से शब्द पसंद है? वाह। तो ऐसे शब्द उसे पसंद है, हाय रे मैं, ऐसे शब्द उसे पसंद नहीं है। तो तीन कारण बताए कि जिस वजह से मेहनत करनी पड़ती है, और पहला कारण था भूलना, दूसरा कारण था महत्व को न जानना, और तीसरा कारण था रचना पैदा करना। हम तीसरे कारण से चालू करेंगे। कौन सी रचना पैदा करते हैं? बहुत सारी व्यर्थ की रचना पैदा करते हैं। ऐसा होगा तो वैसा होगा तो फिर क्या होगा? और भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? दोषी किसको ठहराते थे? भगवान को। और यहां किसको दोषी ठहराते हैं? माया को। माया आ गई, हम नहीं लाते, माया की वजह से आ रहे। जैसे एक रेगिस्तान में एक स्त्री 3 दिन से प्यासी भटक रही है, पानी कहीं मिल नहीं रहा है, और अचानक पानी दिखाई देता है। उसे लगता है ये शायद अरण्य का पानी, मृग मरीचिका है, परंतु नजदीक जाती है तो खुश हो जाती है, ये तो वास्तव में पानी है, एक तालाब है। और वहां खड़ी रह के सोचने लगती है फिर, और दुखी होती है, पर पीती नहीं है। एक राहगीर जाते रहता है ऊंट से, वो उतर के पूछता है क्या हुआ, पानी क्यों नहीं पी रही? वो कहती है मैं सोच रही हूं इतना सारा पानी मैं ये सब कैसे पीऊं, मुझे प्यास इतनी लगी है पर पानी इतना ज्यादा है मैं कैसे पीऊं, ये सोच सोच के मैं रुकी हुई, प्यास तो मुझे बहुत लगी है पर बाद में पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और पानी तो अभी सामने, और नहीं मिला तो? वो कहता है, झुकता है, पानी उठाता है और उसको देता है। वो कहता है बस सिप बाय सिप, अब पी लो, भविष्य में क्या होगा वो छोड़ दो, अवसर अब है। और वो रचना करने लगती है एक के बाद एक, बहुत सारे संकल्पों की सोच विचार विस्तार, क्योंकि व्यर्थ संकल्प की पैदाइश बहुत लंबी होती है। एक के बाद एक व्यर्थ संकल्प दूसरे व्यर्थ संकल्प को पैदा करता है। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, ये हुआ तो, वो हुआ तो, बात कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं से कुछ है उत्पन्न होता है और कुछ है से बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाता है। ये जीवन की बहुत बड़ी कला है कि जो परिस्थितियां जीवन में आ रही है ये समझना आज की सुबह की साकार मूल्य खेल कैसा बना हुआ है, मजे के लिए बना है, इसमें रोना पीटना नहीं है, दुखी नहीं होना है, इसमें बनी बनाई बन रही, बीती सो बीती, रोते नहीं रहना है, दुखी नहीं होते रहना है, व्यर्थ संकल्प की रचना नहीं करते बैठना है, क्योंकि व्यर्थ एक बार चालू हो गया कि वो रुकता नहीं फिर। तो पहला कारण, तो तीसरा कारण बताया रचना, इसके वजह से फिर मेहनत करनी पड़ती है, याद की मेहनत करनी पड़ती है, हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, अमृत वेला मेहनत करनी पड़ती है, मुरली पढ़ने में, मुरली याद रखने में, मुरली धारण करने में, सेवा करने में मेहनत, हर बात में मेहनत, ब्रह्मचर्य में मेहनत, प्यूरिटी में मेहनत। क्या कहा था अभी नीचे बाबा ने, यहां का छोटा बच्चा भी फलक से क्या कहता है कि मैं आत्मा हूं, बूढ़ी बूढ़ी माता है क्या कहती है, हमने भगवान को पा लिया, और वो महात्मा कहते हैं भगवान को पाना बहुत मुश्किल है, और प्रवृत्ति वाले क्या कहते हैं कि हम घर गृहस्थ में रहते हुए भी पवित्र रहते हैं, क्यों, क्योंकि बीच में बाप है, क्यों, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। कितनी बड़ी बात कह दी, वो लोग कहते आग लग जाएगी, यहां स्वयं भगवान बीच में खड़ा है और पवित्रता स्वधर्म है। ऐसी पवित्रता की धारणा, ऐसी ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों में है, तो ऐसा नशा है हर एक को यहां पर। तो पहला तीसरा कारण व्यर्थ की रचना, ढूंढना है हमारे जीवन में ऐसे वो कौन सी बातें, ऐसी कौन सी बातें हैं जो व्यर्थ को जन्म देती है, जो पोटेंशियल वेस्ट है, जिससे संभावना है कि व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हो जाए। क्या वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई संबंध, क्या सूक्ष्म खोज करनी है और उसको मिटा देना है ताकि व्यर्थ रचना उत्पन्न ही ना हो। ये तीसरा कारण जिससे मेहनत करनी पड़ती है, अगर इसको हटा दे तो शायद सारा जीवन ब्राह्मण सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, किसी बात की मेहनत नहीं लगेगी, और यही तो बाबा चाहते हैं। दूसरा कारण महत्व को जानना है। इस ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने 5 शब्दों का प्रयोग किया है। कैसा जन्म है ये प्राप्तियों का जन्म है। दूसरा ये कैसा जन्म है, वरदानों का जन्म है। तीसरा ये कैसा जन्म है, मोहब्बत का जन्म है। चौथा ये कैसा जन्म है, मौजों का। कैसा जन्म है, मदद लेना, देना तो नहीं बोला, मदद लेना, मदद मिलने का समय है। तो ये जन्म बहुत अनमोल है। शांतिवन में मुरली चली, तुम सब कौन हो, बाप किसको देख रहे हो, तुम पूज्य हो, तुम पूर्वज हो, तुम आधार मूर्त हो इस संसार के, जड़ों में बैठे हो तुम। संसार में क्या है, सुबह की साकार मुरली घोर घमसान, क्या है, घोर घमासान लगा पड़ा है। तो ये जीवन क्या बताया, मोहब्बत का जीवन है, ये जीवन मौजों का जीवन है, ये जन्म वरदानों का जन्म है। पालना ही वरदानों से हो रही है, परंतु ये वरदान उनको मिलेंगे जो योग्य है, ये वरदान उनको मिलेंगे जो सुबह सुबह उठकर भगवान से वरदान ले लेते हैं, ये वरदान उनको मिलेंगे जिनकी जीवनचर्या दिनचर्या योगयुक्त है, जिनके जीवन में कूट कूट कर मर्यादाएं भरी है, जो मर्यादाओं से जरा भी नहीं हटते, जिनका जीवन ही श्रीमत है, जिन्होंने श्रीमत को ही जीवन बना लिया है, भगवान की एक एक बात को ऐसे अंदर पकड़कर धारण कर लिए, उनके लिए ये मौजों का जीवन है, उनके लिए ये वरदानों का जीवन है, उनके लिए ये मोहब्बत का जीवन है, मेहनत का नहीं, मुश्किल का नहीं, दुखों का नहीं। जो प्यूरिटी की धारणा में इतने अडिग है, इतने अडिग है, जरा नहीं हिलते, गला कट जाए पर पवित्रता नहीं छोड़ेंगे, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा जिन्होंने कर रखी है पवित्रता के लिए, उनके लिए मौजों का जीवन है, वरदानों का जीवन है, मोहब्बत का यह जन्म है, मदद लेने का बाप खड़ा है सब कुछ देने के लिए। सागर आया है तो महत्व को जानना, शायद महत्व को कम जाना है इसलिए मेहनत लग रही है। महत्व को जानना है सुबह से लेकर रात तक की जो दिनचर्या है उसमें कम से कम 8 बातें हैं। सबसे पहला अमृत वेला, अगर अमृत वेला ही बार बार मिस हो रहा है, अगर अमृत वेले का टाइम रोज रोज अलग अलग है, अगर रोज अमृत वेला नींद आती है, व्यर्थ चलता है, एकाग्रता नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता है, प्रभु प्रेम में आंसू नहीं बहते, तो शायद कुछ न कुछ व्यर्थ चल रहा है। दूसरा अमृत वेला के बाद दूसरा मुरली चिंतन, मनन, गहराई में जाना एक एक पॉइंट की, ये क्यों कहा, वो क्यों कहा, ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा। तीसरा भोजन, योगयुक्त भोजन बनाना, खाना याद में खाना। चौथा ट्रैफिक कंट्रोल, सारे दिन भर मन की ट्रैफिक को कितनी कंट्रोल में रखा, यह मन भटकता रहा बस। पांचवा संबंध संपर्क कैसे रहे, अटैचमेंट तो नहीं हो गई, फैमिलियरिटी तो नहीं आ गई, मोह तो नहीं हो गया किसी में, कोई बंधन तो नहीं बन गया, कोई व्यक्ति हमारे जीवन की वीकनेस तो नहीं है, उसको कुछ होता है तो इधर कुछ होता है, उधर हलचल होती है तो इधर हलचल होती है, व्यक्ति ही बाधा तो नहीं। आज की मुरली का प्रश्न का उत्तर क्या था, क्या था, एक बाप से ही दिल लगाना है, बाकी सबसे क्या करना है, दिल हटा दो, दिल को हटा दो, सब दुख देने वाले। फिर उसके बाद है कर्मयोग, इसका महत्व जानना है। पार्टियों से मुलाकात में क्या कहा, सेवा में जाते हो तो जैसे क्या कर रहे हो, बाबा साथ है, वो साथ रहता है, अनुभव करना है, ऐसा ना हो कि अमृत वेला वो साथ है, मुरली में वो साथ है और दिन में जुदाई, विदाई, वियोग, हर समय वो साथ रहे, यही योग है। उसके बाद में नुमा शाम का योग, यहां पर कितने ऐसे हैं जिन्होंने पिछले एक मास में एक दिन भी नुमा शाम का योग मिस नहीं किया, अमृत वेले की बात नहीं कह रहे, नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30 या 7 से 7:30, बहुत कम, बहुत कम। जितना महत्व अमृत वेले का है उतना ही नुमा शाम के योग को देना है, वो श्रीमत है, मर्यादा है। उसके बाद में अगली बात है मुरली की चर्चा, सोने से पहले मुरली की चर्चा, थोड़ा सा डिस्कशन, मुरली की पॉइंट्स की लेन देन होनी चाहिए आपस में, हमारे मुख से ज्ञान निकलना चाहिए तो ज्ञान के संस्कार निर्माण होंगे। यहां पर व्यर्थ बोल बोल के व्यर्थ के संस्कार निर्माण हुए, अब ज्ञान की बातें बोल बोल के ज्ञान के संस्कार निर्माण करने हैं। और फिर रात्रि की श्रीमद, सोते समय चाट, समर्पण, याद में बाबा की गोद में योग युक्त होकर सो जाना और जल्दी सो जाना ताकि जल्दी उठ सके। तो ये सारी दिनचर्या है, इसके महत्व को जानना, ये बहुत श्रेष्ठ दिनचर्या है। संसार के लोग क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। जब इस दिनचर्या का महत्व जानेंगे तो फिर मेहनत नहीं लगेगी। तो दूसरा कारण महत्व न जानना, मुरली के महत्व को समझना, क्या कह रहा है वो, एक एक लाइन, एक एक वाक्य, एक एक शब्द, क्या शब्दार्थ है, क्या भावार्थ है उसका। फिर सबसे पहला कारण भूलना। क्या भूलना? ये भूल जाना कि मैं हूं कौन और किसको पकड़ लेना, जो नकली है। असली को भूल जाना, नकली को पकड़ लेना। सात सोमान दिए हैं बाबा ने। सबसे पहले मैं निराकार सो साकार हूं, ये समझ के कार्य में आना है। सारी दिनचर्या में ये निराकार स्वरूप भूलना नहीं, क्योंकि निराकार स्वरूप याद है तो स्वतः ही निर्विघ्न है, स्वतः ही निर्विकल्प है, स्वतः ही निर्विकारी है। इसके लिए एक ही अभ्यास है, निराकार हूं पर इस समय साकार में हूं, निराकार हूं परंतु साकार तन द्वारा कार्य कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, पर हूं निराकार। साकार मेरा असली स्वरूप नहीं है, निराकार मेरा असली स्वरूप है। उस निराकार में ही स्थित रहने का अभ्यास, अधिक से अधिक समय, ज्यादा से ज्यादा समय, और बार बार याद दिलाते रहना। तो नहीं तो शरीर में आते ही शरीर सत्य होने लगता है और शरीर के सारे संबंध याद आने लगते, शरीर की तरफ दृष्टि जाती है, शरीर की तरफ आकर्षण होता है, शरीर के भोग और विलास की ही चिंता होती है। बस निरंतर चेतना देह से ऊपर रहे, शरीर से ऊपर उठी हुई। तो सबसे पहला समान, मैं निराकार सो साकार हूं। दूसरा, शक्तिशाली राजा हूं। कौन हूं? शक्तिशाली राजा। प्रजा मेरे अधीन है, मैं राजा हूं। ये कर्मेंद्रिया नौकर है, मैं राजा हूं। बाबा ने कहा राजा बनकर ऑर्डर करो और आह्वान करो, ऑर्डर करो और आह्वान करो, शुभ संकल्प से आह्वान करो, शुभ संकल्प से ऑर्डर करो, वो मानेंगे। इसका प्रैक्टिकल अभ्यास करना है सारे दिन भर। शक्तियों और गुणों का आह्वान करते रहना दिन भर में, सहनशीलता की शक्ति आ जा, पवित्रता की शक्ति आ जा, सामना करने की शक्ति आ जा, अनुशासन आ जा, यथार्थता आ जा। आह्वान करना है, जैसे शक्तियां खड़ी है, जैसे गुण खड़े हैं और एक एक गुण को हम पुकार रहे हैं और वो आ रहे हैं। ये कितना अच्छा अभ्यास है। बेचैन हो रहा है, मन एकाग्र नहीं है, एकाग्रता की शक्ति आ जाओ। बाबा ने कहा अगर तुम ऑर्डर करो तो उनको आना ही पड़ेगा, समय पर ऑर्डर करो, बस तुम समय के पाबंद रहो, वो भी समय पर आएगी। तो दूसरा सम्मान क्या है? मैं शक्तिशाली राजा हूं। तीसरा, मालिक हूं। कौन हूं? मालिक। ये सब मेरे अधीन है, मैं मालिक हूं। अगला, मैं अधिकारी आत्मा हूं, अधीन नहीं, किसी की भी अधीनता मुझे स्वीकार नहीं, किसी पर भी मैं निर्भर नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। ना कोई व्यक्ति मेरी अधीनता है, कोई है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाप सदा साथ है। व्यक्ति आएंगे, व्यक्ति जाएंगे, किसी पर भी हम अधीन नहीं है। एक तो शारीरिक अधीनता है, इसके लिए अपने स्वास्थ्य को इतना अच्छा रखना कि किसी व्यक्ति को का सहारा ना लेना पड़े। मानसिक अधीनता है, बौद्धिक अधीनता, अपनी बुद्धि का निरंतर विकास करते रहना, जबकि बुद्धि का काम हो जीवन में तो हम स्वतः निर्णय ले सके। भावनात्मक अधीनता, इतने दुर्बल हो गए हैं इमोशंस में कि व्यक्ति का आधार लेना पड़ता है। हमारे इमोशंस, हमारी खुशी किसी और पर निर्भर है, इमोशनल डिपेंडेंस जिसको कहते हैं। सामाजिक अधीनता, आध्यात्मिक अधीनता पुरुषार्थ के लिए भी अधीन है। कोई क्लास सुना तो फिर पुरुषार्थ चालू होता है, नहीं सुना तो ठप। मधुबन में आते हैं तो पुरुषार्थ तीव्र होता है, वहां जाते हैं तो ठंडा हो जाता है। ये भी तो अधीनता हुई। बाबा ने कहा तुम अधिकारी हो, किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं है। उसके बाद में अगला सम्मान इसी से संबंधित, बहादुर हूं। कौन हूं? बहादुर, कमजोर नहीं हूं। कोई भी डरा दे, कोई भी गले में पट्टा बांध कर ले जाए, ऐसी गाय नहीं हूं, रीढ़ बकरी, बहादुर हूं। अगला, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सारी शक्तियां मुझ में है, बस आह्वान करना है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑर्डर करनी है शक्तियों को, वो सारी शक्ति आएगी। और इसका तो सारे दिन भर अभ्यास करते रहना है, छोटी छोटी बात में ऑर्डर करना है, देखना है क्या होता है। और लास्ट, स्वस्थिति की सिंहासन पर बैठा हुआ हूं। क्या हूं? स्वस्थिति के सिंहासन पर बैठा हुआ। तो ये सातों बातें भूलते हैं तब क्या होता है? मेहनत लगती है फिर। और जो नकली है उसको क्या समझने लगते हैं? असली। नकली ये शरीर है, असली आत्मा है। नकली आधार है साकार, असली निराकार है। प्यूरिटी का संघर्ष है ब्राह्मण परिवार में, कई सारे युवक और कई सारे बहनें अब तक भी उसी संघर्ष में लगे हैं। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि ये काम कोई व्यक्ति है और जिससे हमारा युद्ध चालू है, परंतु इससे युद्ध करना ही नहीं है, मार्ग कुछ और है। मार्ग है अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाना। तो जहां निराकार है वहां निर्विकारिता स्वतः आएगी, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतः आएगी। एक समय था जब दादिया कितना घंटों घंटों बैठ कर केवल एक ही अभ्यास करती थी, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, और उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था ड्रिल्स के बारे में। तब अव्यक्त मुरलियां चली नहीं थी, केवल साकार मुरलियां थी, उन्हीं के आधार पर इतनी पावरफुल प्यूरिटी उनमें। एक ही अभ्यास है, निराकार सो साकार। तो ये तीन कारण है मेहनत के। और वैसे मुरली चालू कहां से हुई? बाबा किस लिए आए और कहां से आए हैं? उस निर्वाण धाम से आया है जो आवाज से परे का धाम है। किस लिए आया है? हमें उस निर्वाण स्थिति का अनुभव कराने या उस निर्वाण स्वीट होम में ले जाने के लिए। इसके लिए दिनचर्या में परम धाम की अनुभूति और एक अभ्यास आपको बता रहे जो कि कल सुबह करना है। परम धाम में किन किन बातों का अनुभव होता है, किन किन चीजों का अनुभव करना है? सबसे पहला, आत्मा जब परम धाम पहुंचे तो ये संकल्प लाना है, मैं आत्मा यहां के मौन का अनुभव कर रही हूं। इस दुनिया का मौन और परम धाम का मौन, इसमें अंतर है। वहां का मौन कैसे होता है, वहां का साइलेंस कैसा है, मुझे आत्मा को चखना है, वो टेस्ट करनी है। मैं आत्मा परम धाम में हूं और अनुभव करने की कोशिश कर रही हूं कि यहां की साइलेंस कैसी है। यहां की तो साइलेंस देख ली, जहां पर कोई आवाज नहीं वो यहां की साइलेंस है, पर वहां की साइलेंस कैसी होती है? क्या यहां की साइलेंस और वहां की साइलेंस एक ही? अपने आप से प्रश्न पूछना, मैं आत्मा परम धाम में पहुंची, अब यहां के साइलेंस का अनुभव कर रही हूं, पहला संकल्प। दूसरा संकल्प, शांति। परम धाम की शांति कैसी है, शांति धाम की शांति कैसी है, मुझे अनुभव करना है, कुछ समय इसी में बिताना। लक्ष्य है ज्यादा से ज्यादा समय उस अवस्था में रहना, और यह काम अमृत वेला सबसे ज्यादा हो सकता है। तो दूसरा, मैं उस शांति का अनुभव करने की कोशिश कर रही हूं, कैसी है वो शांति, उस शांति को, उस मौन को सुनने का अभ्यास कर रही हूं। तीसरा परमधाम में मुक्ति का अनुभव। कैसी फ्रीडम, किस तरह की फ्रीडम होती है। मैं आत्मा मुक्त हूं परमधाम में, कोई बंधन नहीं है, वहां शरीर ही नहीं है। टेस्ट करना है उस मुक्ति का, कैसा अनुभव होता है कि मैं आत्मा परमधाम में हूं, सभी बंधनों से मुक्त, कोई बेड़िया नहीं, कोई सलाखे नहीं, कोई भी बंधन नहीं, मैं परमधाम में हूं। यह तीसरा अनुभव करने की कोशिश करना है। चौथा, परमात्मा की सारी किरणें मुझ पर आ रही है, प्रेम की। एक है यहां पर बैठ के बाबा के प्यार का अनुभव करना, एक है परमधाम में जब वो सम्मुख है, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही है, कैसा अनुभव होता है। पांचवा, मैं और वो एक हो रहे हैं, कंबाइंड। क्या हो रहा है, दोनों मिल गए हैं, अब क्या अनुभव होता है, एक हो गए। उसके बाद में छठे तत्व का अनुभव करना है, ब्रह्म। यहां पर पांच तत्वों का अनुभव है, ठंडी गर्मी बरसात, इन सब का अनुभव तो है, क्या परमधाम में क्या होता है, परमधाम का कौन सा मौसम है, वहां का टेम्परेचर क्या है। मन में संकल्प लाना है, ये जो ब्रह्म तत्व है, ये जो ब्रह्म लोक है, ये जो ब्रह्म देश है, ये जो ब्रह्मांड है, ये कैसा है। तो ये 10 मिनट से चालू करना है और बढ़ाते बढ़ाते आधे घंटे तक, आधे घंटे तक केवल ऊपर ही लटके रहना है। कहां पर, परम धाम में। एक एक चीज यहां कैसी है, ये आत्माओं की नगरी है, चक्कर लगाना है वहां पर, थोड़ा सा देखना है, अच्छा ये यहां है, ये यहां है, ये सेक्शन है ना वहां पर, यहां की गलियां कौन सी कॉलोनी है, कौन से सेक्टर है, कौन से ब्लॉक है, कौन सी एरिया है, कौन से नगर है, कौन से शहर है, मुआयना करना है परमधाम का, चक्कर लगाना है कि ये निराकारी लोक है, मैं निराकारी वतन में हूं, यहां आत्माएं निराकार है, मैं भी निराकार हूं, यहां का मौन कैसा है, यहां की शांति कैसी है, यहां की प्यूरिटी कैसी है। एक तो प्यूरिटी है यहां की जो हम अनुभव करते हैं, मैं आत्मा परम पवित्र हूं, एक पवित्रता वहां की है, वहां कैसी पवित्रता है, जहां शरीर ही नहीं है वहां की पवित्रता कैसी है, अनुभव करना है उस प्रभु प्रेम का, अनुभव करना है। कितना अच्छा अभ्यास है ये, करेंगे सबको, सब इसको ऐसे एक एक संकल्प, 7 संकल्प लाने हैं। पहला मौन, साइलेंस, दूसरा शांति, तीसरा मुक्ति, चौथा पवित्रता ले लो, पांचवा प्रभु प्रेम, छठवा उसके साथ कंबाइंड, और सातवा ये तत्व। ये छठा तत्व क्या है, पांच तत्व का बहुत अनुभव ले लिया, इन 5 तत्वों ने ही तो सारा काम बिगाड़ दिया, खींच खींच के पागल कर दिया, इन्हीं 5 तत्वों में बैठ के ढोल बजाते रहे और नीचे उतरते रहे। अब इन 5 तत्वों से परे जो धाम है, वो जो तत्व है, उसका अनुभव मुझे करना है, तो ये अभ्यास करना है। तो ये और नीचे अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन में, उसमें भी बाबा ने क्या कहा, अभी अभी अशरीरी, अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, मैं आत्मा अशरीरी हूं। जितना जितना शरीर के भान से आत्मा परे रहेगी, पावरफुल होती जाएगी। जितना जितना शरीर का चिंतन है, चाहे वो बीमारी का हो या स्वास्थ्य का, आत्मा शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहेगी बस। इसके लिए शरीर को ऊपर रखना है, आत्मा को शरीर से, चेतना ऊपर रहे, चिंतन उस लोक का चालू रहे, इस दुनिया में रहते हुए, यहां के सारे कार्य करते हुए भी, जैसे यहां के हम हैं नहीं, ये अभ्यास। तो मेहनत के तीन कारण, एक तो भूलना, भूलना नहीं है, अपने रूप को, अपने स्वरूप को, अपने असली स्वरूप को बार बार याद करते रहना, मैं शक्तिशाली राजा हूं, मैं मालिक हूं, मैं बहादुर हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं स्वस्थिति के सिंहासन पर स्थित हूं और ऑर्डर कर रही हूं, और सारे दिन भर ऑर्डर चलाते रहना और सारे दिन भर आह्वान करते रहना। किन का आह्वान करेंगे? शक्तियों का और गुणों का। हिस्ट्री हॉल के सामने गुणों की लिस्ट है, जब भी वहां से गुजरते हैं एक बार लिस्ट पढ़ते रहना, नजर डालनी। अच्छा अच्छा, जब जब वहां से गुजरेंगे एक गुण को पकड़ लेना और उस पर थोड़ा चिंतन करना और उसी गुण को आह्वान करना दिन भर। तो गुणों का आह्वान, शक्तियों का आह्वान, और पुराने जो अनादि संस्कार है उनका भी आह्वान। क्योंकि परेशानी के तात तीन कारण कौन से? चंचल मन, भटकती बुद्धि और पुराने संस्कार। और बाबा ने क्या पूछा? सबसे पुराना कौन से संस्कार है? आदि अनादि, उनका आह्वान करना है, उनका, उनको पुकारना है, आ जाओ, कहां हो तुम, तो पुकारना है उनको। गैप है बहुत बड़ी 5000 वर्ष की, उनको पुकारना है। और जो जो नकली है, चाहे वो नकली संबंध बना के रखे, चाहे वो नकली कल्पनाएं हैं, चाहे वो नकली यादें हैं, चाहे वो नकली भय है, उन सब नकली से छूट जाना है। जैसे दिखाया, एक राजा सुबह सुबह अपना दरबार लगाता है, ठंडी का मौसम है, अभी अभी धूप निकली है, और कहता है अपने सभी लोगों से, जिसको जो कला प्रदर्शित करनी है करो। एक जादूगर सामने आता है, कहता है मेरे पास ये 2 हीरे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं तुम्हारी सभा को कि इनमें से जो ये मुझे बता देगा कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, वो हीरा उसका हो जाएगा, असली वाला। कितने लोग आते हैं, दोनों हीरे एक सरीके दिखने के हैं, बिल्कुल भी जरा भी अंतर नहीं है, पर कोई पहचान नहीं पाते असली कौन सा है, नकली कौन सा है। आखिर में एक अंधा व्यक्ति कहता है कि मैं कोशिश करता हूं। सब लोग सोचते हैं हमारे पास आंख है, हम नहीं बता पाए, ये क्या बताएगा। पर राजा भी क्या करता, इज्जत का सवाल था, कहता है ठीक है आओ। और वो आता है, दोनों हीरो को हाथ लगाता है और फिर कहता है कि ये असली है। सब पूछते हैं तुमने कैसे पता किया, कैसे? जो कांच होता है वो गर्म हो जाता है, और जो असली होता है प्रकृति का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कहता है ये है वो कारण। वो जादूगर कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता था, पर मेरा जो, जिस तरीके से मैं पहचानता हूं, वो कुछ और कारण है, और तरीका है। राजा कहता है अब तुम अपना तरीका बताओ। तो वो 2 हीरो को लेता है, एक को जमीन पर जोर से पटकता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है ये था मेरा तरीका कि जो कांच का बना है वो टूट जाएगा और जो असली है वो कभी टूटता नहीं। तो ऐसे 2 कारण हैं, 2 तरीके हैं असली को जानने के। जो असली होगा वो किसी से भी प्रभावित नहीं होगा और वो कभी भी टूटेगा नहीं। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आने दो, नहीं टूटेगा, क्योंकि असली है, क्योंकि असत्य स्वरूप में स्थित है। और जो नकली है वो टूट जाएगा। रोना पीटना सुबह की मुरली, या तो प्रभावित होते रहेगा व्यक्तियों से, वस्तुओं से, चीजों से। दुख का वायुमंडल होगा तो दुखी हो जाएगा, सुख का वायुमंडल होगा तो सुखी हो जाएगा। तो क्या बनना है हमको? असली हीरा, जो ना टूटे ना फूटे और जो प्रभावित ना हो किसी भी चीज से, चाहे शरीर की कैसी भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए। बीमारी अपना काम करते रहे, हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहे, कोई भी हमको डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो ये सारे सम्मान दिए हैं। तो पहला कारण बताया भूलना, तो भूलना नहीं है, बार बार याद करना है। दूसरा कारण बताया था महत्व को बढ़ाना है, समझना है प्राप्तियां क्या मिली है, वरदान क्या मिले हैं। और सबसे पहले शुरुआत तो यहां से करो कि इस ब्राह्मण जीवन में हमने क्या क्या पाया है। वो नशा वापस लाना है, कि हमें कौन मिला है जिसे संसार अब तक ढूंढ रही है, और हमारा जीवन कैसा था पहले, नरक में पड़े थे, गंदगी में डूबे हुए थे, बाबा ने कैसे स्वच्छ बनाया, कितना पवित्र विचार दिए है, शुभ संकल्पों का खजाना दिया है, और हम क्या कर रहे हैं अपने आप से बातें, तो महत्व। और तीसरा बताया व्यर्थ, वो कौन से कारण है जो व्यर्थ को जन्म देते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपने असली स्वरूप में स्थित होना है। बाबा ने यहां कुछ उदाहरण दिए, सबसे पहले कन्या और मां का उदाहरण दिया है। कन्या जब मां बन जाती है तो क्या हो जाता है, सारी पावर्स उसमें आ जाती है, सहन करने की शक्ति आ जाती है, पहले क्या थी और अब देखो क्या बन जाती है, वो बेटे के लिए बच्ची के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है, प्रेम आ जाता है, स्वतः आ जाता है, स्वरूप हो जाता है उसका, वो मां है अब। उसी तरह जैसे मैं अपने आप को संकल्प देता हूं मैं निराकारी आत्मा हूं, तो कोई भी साकार देह की तरफ मेरा आकर्षण कैसे हो सकता है। दृष्टिकोण चेंज, यही जीवन है। देहभान से आत्मा अभिमान की यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलने लगता है। जीवन परिवर्तन यही पुरुषार्थ है। कैसे हम चीजों को देखते हैं, दृष्टिकोण ही बदलने लगता है। जैसे एक माता को पूछा गया, तुम्हारे बेटी की अभी अभी शादी हुई वो कैसी है, वो कहती है मेरी बेटी उसके जैसा भाग्यशाली तो और कोई है ही नहीं, उसका पति उसे बहुत प्यार करता है, उसके पति ने उसे कार दी, बंगला दिया, बहुत सारे नौकर हैं, और वो 12 बजे तक सोती है और उसको बेड पर चाय मिलती है। किसके लिए पूछा, तुम्हारी बेटी कैसी है। फिर पूछा, हमने सुना है तुम्हारे बेटे की भी शादी हुई वो कैसा है, वो कहता है उसकी तो फूटी किस्मत है, उसने अपने पत्नी को कार दी, उसको उसने अपने पत्नी को बंगला दिया, और उसकी पत्नी तो 12 बजे तक सोती है और उसको चाय भी वहीं पर चाहिए। पर यहां क्या है कि इसके लिए मेरे बेटे जैसा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं, और बेटी सबसे अधिक भाग्यशाली। क्या है ये दृष्टि, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, इसी को ही तो बदलना है। जितनी हमारी अभी समझ है और जैसे हम अब चीजों को देख रहे हैं, क्या इससे परे भी कोई दूसरी समझ है, इसी चीज को देखने की कोई और दूसरी भी विधि है। जैसे दो यात्री है, एक अनुभवी है, एक अनुभवी नहीं है, पहली बार उसको ले जा रहा है पहाड़ पर, माउंट में जाते नहीं यहां पर, पहाड़ पर घूमने चढ़ने पिकनिक करने, वैसे दो लोग जा रहे हैं, एक बहुत अनुभवी है जो कई बार गया है, दूसरा ज्यादा अनुभवी नहीं है। वो बीच में पहुंचता है, कहता है कि तुमने तो कहा था बड़े अच्छे अच्छे सीन दिखेंगे, यहां तो कोई अच्छे सीन ही नहीं दिखाई दे रहे, काटे ही काटे दिखाई दे रहे, झाड़ियां दिखाई दे रही है, कहां है वो अच्छे वाले ब्यूटीफुल सीन्स। वो कहता है दूसरा अनुभवी वाला, तुम अभी ब्यूटीफुल सीन्स के बीच में हो, पर दिखेंगे तब जब ऊंचाई पर पहुंचोगे। यू आर एट द सेंटर ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी, पर तुमको दिखेंगे कब, ऊंचाई पर पहुंचोगे तब नीचे देखोगे ना तो सारा हरियाली दिखाई देगी। अभी कहते हो कि कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, शायद पोजीशन गलत है। हम जो कह रहे हैं कि अभी हमारे पास इतना ज्ञान है और हमने इतना समझा, इतना धारण किया, ये ब्राह्मण जीवन यहां खड़ा है, और फिर भी दुख बीच बीच में आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ऊपर पहुंचे नहीं है, मन को उठाना है, ऊपर उठाना है, ऊपर ले जाना है, उसको यहां बिठाना है और यहां से देखना है क्या दिखाई देता है, कुछ और दिखाई देगा। तो मेहनत से अपने आप को छुड़ाना है। बाबा ने कहा मुश्किल आसान कर देनी है, मुश्किल आसान, यहां होटल है एक देखा होगा, बड़ा पुराना होटल है, मुश्किल आसान, जब भी मुश्किल शब्द आया तो क्या लगा देना सामने, मुश्किल आसान है। बोलने ही जाओ कि बहुत मुश्किल है, सामने बोल देना आसान है। मेहनत मोहब्बत में परिवर्तित हो जाए। बाबा के प्यार में वो पावर है, वो शक्ति है कि जहां प्यार होगा वहां सब कुछ होगा। इसके पहले भी सुनाया था, एक सन्यासी जा रहा है पहाड़ पर, थक गया है बेचारा, देखता है एक छोटी सी कन्या पीठ पर बोझ लिए जड़ रही है और उसको पूछता है कि तुम थकी नहीं? वो कहती मैं नहीं थकी। वो सन्यासी कहता मैं तो थक गया हूं, इतनी ऊंची पहाड़ी, इतनी धूप, कड़ी धूप। वो गौर से देखता है कौन है, तो वो बच्ची जो है उसके पीछे एक छोटा बच्चा है। वो पूछती है उसको, वो सन्यासी पूछता है इसका तुमको बोझ नहीं लगता है? वो कहता है वो मेरा भाई है और भाई का बोझ नहीं होता है, वो मेरा भाई है और भाई का कभी भी बोझ नहीं होता है, जिससे प्यार है उसका कभी भी बोझ नहीं होता है। बोझ किसका होता है? जिससे प्यार नहीं है, जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। और दुश्मन तो जो काम हमको करना ही पसंद नहीं है करना, उसमें क्या होता है? दुख होता है। और जो बहुत इंटरेस्ट है, बाबा ने उदाहरण दिया ना, बाहर वाले मधुबन में आते हैं, कहते हैं कितना हार्ड वर्क करते हैं, पर तुम्हारे लिए हार्ड वर्क है क्या? वो तुम्हारे लिए क्या है? मौज है, सेवा है, खेल है, खिलौना है ये हमारे लिए। हमको तो बहुत मजा आता है क्योंकि हम इंटरेस्टेड है उसमें, इन्वॉल्व है, हमारे घर अपना घर समझ के कर रहे हैं। दुनिया वाले कहते हैं अच्छा तुम 3 बजे कैसे उठते हो, कैसे कर लेते हो ये सब, उनको आश्चर्य होता है। जहां प्यार है वहां सब कुछ सरल है। प्यार को बढ़ाना है, इस यज्ञ के प्रति प्यार, बाबा के प्रति प्यार, श्रीमत के प्रति प्यार, मुरली के प्रति प्यार, अमृत वेले के प्रति प्यार, मर्यादाओं के लिए प्यार, सबके लिए प्यार, मधुबन के लिए प्यार, परिवार के लिए प्यार, हर चीज के लिए प्यार, तो यहां पर रहना बहुत आसान होगा, यहां पर सेवाएं करना बहुत आसान होगा, मुश्किल कुछ भी नहीं होगा। मुश्किल है क्योंकि प्यार कम है। प्यार को बढ़ाना है, जितना प्यार बढ़ेगा उतनी हर बात सहज सरल होती जाएगी और हल्के रहेंगे। इसके लिए ये तीनों ही चीजों पर काम करना है, भूलना नहीं, महत्व को जानना, तीसरा व्यर्थ जो रचना हम कर रहे हैं सारे दिन भर, पहले तो डायग्नोसिस करते आना चाहिए कि ये व्यर्थ है, कि ये व्यर्थ चल रहा है, और उसको स्वीकार भी करना है कि हां ये व्यर्थ है, अब पर मुझे इससे बाहर निकलना है, ये नकली है, ये झूठ है, ये असत्य है, और मन में संकल्प लाना है कि पुरुषार्थ बढ़ाना है। एक मुरली में बाबा ने कहा है पुरुषार्थ में जब तुम्हारी तड़प होगी तब वो तीव्र होगा। तो क्या करना है पुरुषार्थ में? तड़प, आग लानी है, आग, आग की लपट का बखार दो, तो अपने आप को तैयार करना है। तो अभी अभी जो मुरली चली शांतिवन में उसको फिर से पढ़ना है, उसमें से कुछ होमवर्क निकालने हैं, और अगली बार तक बाबा जब तक नहीं आते कुछ ना कुछ प्रयोग करते रहना है, नए नए प्रयोग, हर दिन अमृत वेला प्रयोग, सारे दिन भर में प्रयोग, और उमंग उत्साह कम नहीं होने देना है बस, क्योंकि जहां उमंग उत्साह खत्म हो गया वहां ब्राह्मण जीवन गया। इसके लिए ऐसी ही बातें सुनना जिससे उमंग उत्साह बढ़े, उन सब चीजों से, व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रहना जो हमारे उमंग उत्साह को कम कर देते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे निर्वाण धाम में रहने वाले बच्चों को, ऐसे निराकार और साकार स्वरूप बच्चों को, ऐसे शांतिप्रिय बच्चों को, ऐसे मेहनत से मुक्त बच्चों को और मोहब्बत में लीन बच्चों को, ऐसे वरदान, वरदान क्या? इस जन्म को वरदानी जन्म वाले बच्चों को, मोहब्बत में रहने वाले बच्चों को, मौज में रहने वाले बच्चों को, ऐसे प्राप्तियों में रहने वाले बच्चों को, ऐसे न भूलने वाले बच्चों को, ऐसे व्यर्थ की रचना न करने वाले बच्चों को, ऐसे संगम युग के महत्व को जानने वाले बच्चों को, ऐसे ऐसे मदद लेने वाले बच्चों को, ऐसे 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 जो सीखा है उससे दूसरों को सिखाने वाले बच्चों को, दादी से मुलाकात, ऐसे 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 सेवा में बाप को साथी बनाने वाले बच्चों को, ढेर सारे सामान है मुरली में, ऐसे बहादुर बच्चों को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को, ऐसे मालिक बच्चों को, ऐसे शक्तिशाली राजा बच्चों को, ऐसे अधिकारी बच्चों को, ऐसे जो अधीन नहीं है ऐसे बच्चों को, ऐसे जो कमजोर नहीं है ऐसे बच्चों को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।